ചേച്ചന്റെ ചിന്താമണി പദ്ധതിയിലെ അഷ്ടമുദ്ധ്യായ
Supersoul within everyone's heart speaks not externally but from within.
Raman Gandhi Adhikha Paramatma Hare ke hriday mein bhitar se bolte hain bahar se nahi.
He instructs the devotees in all respects and that is his way of instruction.
Ve sabhi prakar ke bhakton ko upadesh dete hain aur yahi unki upadesh vidhi hai.
Before Bhakshita Prabhupada, Shri Prabhupada ki jai. Here Sri Ramananda Roy admits that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the super soul.
Yahan par Sri Ramananda Roy swikar karte hain ki Sri Chaitanya Mahaprabhu Paramatma hai.
It is the super soul that inspires a devotee. Therefore, he is the original source of the Gayatri Mantra.
Paramatma ki bhakt ko prerna, Paramatma hi bhakt ko prerna dete hain. इसलिए वे गायत्री मंत्र के मौलिक उद्गम हैं.
Which states Om Purasa Tat Samator Varinyam Bhargo Divasya Dimahi Jyo Na Prachodayat. So Savita is the original source of all intelligence.
गायत्री मंत्र में कहा गया है Om Purasa Tat Samator Varinyam Bhargo Divasya Dimahi Jyo Na Prachodayat. Savita समस्त बुद्धि का आदि स्रोत है.
Savita is Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Ye Savita jo hai wo Chaitanya Mahaprabhu hai.
This is confirmed in Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 4th chapter, text 22.
Isi pushti Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 4th adhyay, shlok sankhya 22 mein hoti hai.
Prachodayena pura Saraswati vittam vacha vyasya satyam smrityam vidhi sva lakshana pradurabhut kilasyataha samaye rishinam rishibha prasidatam. That may the Lord, who is the beginning of the creation, may the Lord, who is the beginning of the creation, amplify the potent knowledge of Brahma from within the heart and inspire him with full knowledge of creation and his own self, and it will appear to be generated from the mouth of Brahma to be pleased with me.
Prachodita yena pura sarasvati vitanvata jasya sutim sutim vidhi svalakshana pradurbhuta kilasyataha samehishina vishabha prasidatam. जिन भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय के भीतर से निहित ज्ञान को वर्धित किया और सृष्टि तथा परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से उन्हें प्रेरित किया और जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होते प्रतीत हुए वे मुझ पर प्रसन्न हो.
This was spoken by Shukadeva Goswami when he invoked the blessings of the Supreme Personality of Godhead before delivering Srimad Bhagavatam.
यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के समक्ष श्रीमद् भागवत सुनाने के पूर्व भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा था.
गुरु परंपरा प्रणाम
Shri Chaitanya Mahaprabhu is come to us.
get purified, your senior man, but I get purified also, we all get purified by this born in a
श्रीमती भूखा महाराज जो है स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप एक वरिष्ठ भक्त हैं तो आप भी शुद्ध होते हैं और हम भी शुद्ध होते हैं जब हम सब एक बार लीला सुनते हो.
This is a very wonderful verse of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and we see more extremely valuable instruction coming from Sri Ramananda Roy.
तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो है अति खूबसूरत श्लोक है और रामानंद राय जी से उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण विषय नाम मिलता है.
Remember that in this entire conversation that we've been studying in this chapter called Talks Between the Lord and Ramananda Roy, that Ramananda Roy is the puppet, and he's simply repeating what Antaryama, here's another name, Antaryami, the super soul, or Mahaprabhu is telling him within the heart what to say.
So this adhyaya is the shishad that Mahaprabhu dvara Ramananda Roy ki beech vartala. So here हमें ये समझ लेना चाहिए कि राय रामानंद जो है वो बिल्कुल कठपुतली की तरह है और उनकी संचालन पीछे से परमात्मा कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं.
So Antaryami is another name for super soul. Please write it down. Antar, A-N-T-A-R, and Yami is one word. Y-A-M-I. Antaryami is an important name of super soul.
तो Antaryami परमात्मा का एक दूसरा नाम प्राय शब्द.
So again, the translation here of the shloka, the super soul within everyone's heart speaks not externally but from within.
तो यहाँ अनुवाद में हम दोहराते हैं, परमात्मा हर एक के हृदय में के भीतर से बोलते हैं, बाहर से नहीं.
So there's two types of guru. There is Mahanta Guru.
तो दो तरह के गुरु होते हैं.
And there is Chaitya Guru.
तो एक महंत गुरु और दूसरे चैत्य गुरु.
What is Mahanta Guru Prabhu?
महंत गुरु कौन होते हैं?
Yes, the external spiritual master. Thank you very much.
तो भैया गुरु सही जवाब.
It's very important. And of course, you know that the super soul, the spiritual master within.
तो बहुत जरूरी है. तो एक एक गुरु जो है अंतर्यामी गुरु होते हैं.
ये चैत्य गुरु.
नचैत्य गुरु भी कहते हैं.
Now the next sentence is really important.
अगला
Listen carefully, and it's so important that you please write it down.
ध्यान से सुनिए और बहुत महत्वपूर्ण है, आप लिख भी सकते हैं.
This is for all of us.
हम सबके लिए लागू होता है.
As you listen, I said Ramananda Roy is not just specifying how the Lord interacts with Paramahansa. He's not just limiting to that category. This, you've got to download this. It's really important to understand this point.
तो इसको समझना, इसमें बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि रामानंद राय सिर्फ भगवान चैतन्य महाप्रभु से उनसे ये बातचीत नहीं कर रहे कि भगवान और एक परमहंस जो है आपस में कैसे वार्तालाप करते हैं, पर इसका एक गूढ़ अर्थ भी है.
So under the instruction of the Supreme Personality of Godhead Mahaprabhu, Ramananda Roy says that He, meaning the Lord, instructs the devotees in all respects. Write down that entire phrase.
तो यहाँ पर रामानंद राय बता रहे हैं कि वे सभी प्रकार के भक्तों से को उपदेश देते हैं भगवान, और यही उनकी उपदेश विधि है.
Then, having just said that, he reinforces the statement by declaring, and that is his way of instruction.
तो इस देखिए ये बात बोलने के बाद इसको और पुष्ट कर रहे हैं, दोबारा पुष्ट कर ये कहके यही उनकी उपदेश विधि है.
So the fallen jivas, unless they are already liberated souls, meaning that they're already advanced in the path of pure devotional service, they fallen souls are rather dull brains.
तो जो पतित जीव है जब तक वो मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पड़ते हैं तब तक जो है उनको मंद बुद्धि कहा जाता है.
Of course, the exception is those fortunate souls who carry over their advancement in Krishna consciousness from a prior lifetime we see in our own movement.
तो हम अपने आंदोलन में कई ऐसे जीव देख सकते हैं जो पिछले ही जन्मों से जिनकी सुकृतियां जाग रही है जो इस पथ पर है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर है.
Why some devotees become advanced at rocket speed and others remain quite slow or even fall off the wagon.
तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ भक्त जो है बहुत जल्दी उन्नति कर जाते हैं जबकि बाकी भक्त जो है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ उनमें से कुछ तो जो है इस मार्ग से भी भ्रष्ट हो जाते हैं.
From the previous lifetime.
तो इस तरफ निर्भर करता है कि कितनी सुकृति है हमारे पास पिछले जन्मों से.
You know what I mean? Sukriti. What does it mean? Spiritual benefits. That's all right. Yes. Sukriti means the benefits that have been, the English word is accrued or gathered, benefits that have been collected, we say as a result of prior activities.
आध्यात्मिक जो है फायदे जो हम पहले से हम जमा करते रहते हैं.
So the devotees in our movement, we can see those who become pundits almost effortlessly. I mean, there's a lot of work involved, but I mean to say that it comes naturally to them because in their previous life they were also pundit. And so it's clear from the instruction about Guru Krishna, it's very clear.
तो कई भक्त देखते हैं बिल्कुल पंडितों के समान होते हैं तो ऐसे कैसे अचानक पंडित बन जाते हैं. अचानक नहीं बनते पिछले जन्मों की सुकृतियां होती है शामिल.
भगवद गीता कृष्ण says without any fog or haze he says that we continue the devotee continues where they left off in the last life they continue from that point so that's why we see so much variety so much different levels of advancement in Krishna consciousness in our movement.
तो इसलिए भगवद गीता जो है इस तथ्य को जो है साफ करता है हमारे लिए कि वो ये वादा करता है कि जिस जगह से हम बाकी छोड़ते हैं वहीं से हम अगले जन्म शुरू करते हैं. यही वजह है हम देखते हैं कि इतना तारतम्य भेद है अलग अलग भक्तों के बीच.
Fortunate devotees have ruchi and they study, they have a taste for studying the shastra, they learn the shastra. And there's not that many, but in our movement, but some become pundits, you know. They're not widespread, unfortunately, but it will be increasing more and more. When you, as you young people get older and older, we'll see more and more pundits coming up now.
तो भक्त हम इसलिए देखते हैं कि अलग अलग तरह के भक्त कई भक्त जो है पंडित होते हैं और जैसे जैसे हम और यहाँ पर उम्र में बढ़ोतरी होगी तो हम अपने आंखों के सामने और भी ऐसे उभरते हुए पंडित देख पाएंगे.
To understand that it's inevitable, it's predestined.
तो ये जो है ये पहले ही ये इसका निर्देश निर्धारित हो चुका है पूर्व निर्धारित.
If the meteors in UK are studying Sanskrit, then it's only a matter of time that ISKCON catches up with them.
तो अगर ब्रिटेन में जो है अगर लोग संस्कृत पढ़ना शुरू कर चुके हैं तो बस ये कुछ ही समय की बात है कि उनके पास धीरे धीरे ऐसी सुकृतियां आ जाएंगी और ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे.
Of course, in all fairness, there are, you know, quite a few institutes around the world in ISKCON for like Vrindavan Institute of Higher Education, Mayapur Institute of Higher Education, so forth, where there is Sanskrit studies and there is Shastra studies. So, but actually, this is just, you know, the beginning stage, actually, in comparison to the scope that Srila Prabhupada envisioned when he started this movement.
तो अभी जैसे इसी और कदम बढ़ाते हुए वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ये है जहाँ पर संस्कृत की भी शिक्षा दी जाती है मगर ये अभी शुरुआती दौर है. अभी जैसा प्रभु चाहते थे उसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है. जैसे प्रभु ने जो है वर्णाश्रम विश्वविद्यालय का जो है एक परिकल्पना दी थी.
trained myself in India, here in India, to say university instead of college, because if you say college, you know, the students go, not college, like as if that's like kindergarten. Okay, fine. So I've trained myself to say university instead. So what Srila Prabhupada laid out decades ago, not just in his last days, but at this point, it must be close to 40 years ago that Srila Prabhupada gave the instructions to establish Varnashram College. Varnashram University, if we want to translate it into, you know, Indian terminology, Mace University.
40 साल पहले जयश्री बाबा ने वर्णाश्रम विश्वविद्यालय की रूपरेखा जो है वो दी थी
तो इसका सोसाइटी इज एक्चुअली मेंट फॉर बीइंग अ यूनिवर्सिटी टू क्रिएट फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स दैट्स द पर्पस ऑफ दिस
कॉलेज इसका का जो मुख्य उद्देश्य है एक विश्वविद्यालय की तरह संचालित होना और पंडित जो है वो पैदा करना ब्राह्मण पैदा करना
Just like in any Monday university, not everyone, not all the students can be jumpers.
So, as we see, in Maharashtra, everyone can't reach the first level.
So, in society, everyone's not going to be a Brahmin. That's a fact.
So, society, in society, everyone's not going to be a Brahmin.
Even in Vedic culture, see, an uninformed devotee may presume that. Brahmins were perhaps in the majority in Vedic culture or something, but it's actually not so.
तो पुराण काल में जो है कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्राह्मण जो है वो बहुसंख्यक हुआ करते थे हमेशा ऐसा नहीं था.
Since time immemorial, society has been structured in a pyramid shape.
तो एक पैलेस जो है ये इस तरीके से एक त्रिकोणाकार तरीके से जो है समाज चलता था
ब्राह्मणों
का जो है सबसे अग्रणी हुआ करते थे
क्षत्रिय
का स्थान होता था
वैश्य
आखिर में शूद्र का स्थान
That's clearly stated by Krishna in the Bhagavad Gita, Chaturvarna, Maya, Shishya, Guna, Karma. According to the Guna and Karma.
तो गुण और कर्म के विभाजन के मुताबिक जो है चार वर्णों की सृष्टि के भगवान ने सरस्वती की भगवान ने
Srila Prabhupada attempted to start Varnashram College. He told the Gurukul teachers it was to start a grammar school. It was supposed to start a grammar school where the teacher was supposed to watch what was the nature of the students and then set them on a path accordingly.
So Srila Prabhupada यहाँ तक भी निर्देश दिए थे गुरुकुल के अध्यापकों को कि वो बच्चों को जो है बच्चों को ध्यान से देखें परखें ताकि उनका वर्ण जो है वो निर्धारित किया जा सके
The perverted reflection is there in the mundane education system. At least when I was in high school, when I was in school, grammar school, they had a XYZ system, something like that, that they would see how the student is doing, and then they would route the student towards college prep courses if they saw that they had the brain for it, so that even the non-devotees, they understand that they're supposed, this is really ironic, they understand that there's supposed to be separations of classes, of Varnashram is a natural phenomenon, it's not just India.
So, this Varnashram is very natural, it's not a thing, because we see that outside of our school, वहां पर भी जो है इसी तरीके का एक विधान है कि बच्चे जो है वो उनको जो है अलग अलग करने का श्रेणियों में जो है बांटने का एक विधान है उनके पढ़ाई लिखाई के स्तर के आधार पर उनके दिमागी विकास के आधार पर
So even though my family life was very troubled, but at the same time I did well in school, miraculous by mercy of Krishna.
तो महाराज बता रहे हैं कि उनका पारिवारिक जीवन जब छात्र थे वो उसमें बहुत उथल पुथल था फिर भी वो अच्छे छात्र थे
So I was always routed into the X category, which meant college preparation, university preparation.
तो मेरे को जो है सर्वोत्तम श्रेणी एक्स श्रेणी में जो है मुझे मेरे को उस तक भेजा गया क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था.
So in high school I also did well, so I was on the fast track for the university.
तो मुझे जो है हाई स्कूल से जो है मुझे विश्वविद्यालय की तरफ जो है भेजा गया.
I don't know if they still have this in America, but they were recognizing the division of society. It's just common sense. It's all what it's not some Indian thing, you know.
तो ये देखिए सामान्य ज्ञान है. इसमें ऐसा नहीं कि ये भारतीयों ने विशेष तौर पर जिसका ठेका लिया हुआ है कि विभाजन जो वर्ण विभाजन जो है ये सामान्य ज्ञान के हिसाब से है.
People are going to have different qualities, guna and karma, you know, according to their adhikar.
तो लोग जो है ये चीज इसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं क्या उनकी गुण है क्या उनके कर्म है.
So in the high school I attended, those students who were not college preparation material were rather towards it was a high class high school, very, you know, good well-rounded opportunity.
तो वो लोग जो पढ़ाई लिखाई के लिए जिनका रुझान नहीं था और उस तरीके का उनके अंदर गुण नहीं थे तो उनको जो है दूसरे मौके दिए जाते थे. हमारा स्कूल जो है वो इसमें जो है बहुत अच्छा था.
So I don't know if they do this anymore, it might not be politically correct, but when I was in high school, girls who were not university, girls who were not university material would be routed towards domestic training, actually. They had courses for training girls in domestic activities.
तो उन दिनों जो है 60 के दशक की बात है 50-60 के दशक की बात है अमेरिका में जो लड़कियां थी उनको जो है कॉलेजों में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि और उनको ज्यादातर जो है घरेलू कामों में जो है लगाया जाता था उसी के उनको प्रशिक्षण दिया जाता था स्कूल के बाद.
बॉयज हु वर नॉट कॉलेज मटेरियल हु डिडन्ट हैव द ब्रेन फॉर इट दे वर रादर द वे माय स्कूल हैड अवेलेबल auto shop. In other words, you could go in there and you could learn how to work on automobiles. It was a trade school. You know, it actually had these different opportunities, or there was woodworking, I think. Other things, somehow or other, there were other opportunities for learning different trades, and that's what it's supposed to be, a trade school.
So, वहाँ पर जो है 50-60 के दशक में अमेरिका में इस तरीके की व्यवस्था थी कि जो लोग जो है पढ़ाई के लिए उच्चतम पढ़ाई के लिए और इच्छुक नहीं है या उसके काबिल नहीं है तो उनको जो है वो औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो है भेज देते थे और वहां पर जो है वो मशीनें चलाना सीखते थे इस तरीके से वहां की व्यवस्था है.
So, those who are taught for rabbinical activity, then they're training up, and if they just don't complete, Krishna says very clearly, the Bhagavad Gita, that they will carry on where they left off. Everyone will carry on where they left off in devotional service.
तो सभी लोग जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जिनका वो जो ब्राह्मण के गुण जिनके अंदर नहीं है तो बाकी जो जिस तरीके से संस्कार है उसी के मुताबिक उन ब्राह्मणों में जो है वो आगे चलते थे उस रास्ते पर.
So Krishna is the super soul, as pointed out in this verse, and therefore Krishna is participating in this routing process, sending his devotees according to their adhikar, according to their qualification.
तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में वो सभी के हृदय में है और उनके उनके सुकृतियों के अनुसार उनको विभिन्न भागों में जो है बांटा जाता है और आगे बढ़ाया जाता है.
So Prabhupada is pointing out that in this verse, Ramananda Roy is admitting that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the super soul.
यहाँ पर जो है रामानंद राय इस बात की पुष्टि कर रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर.
Thus we have discussed that everything he was saying was actually engineered or created by Mahaprabhu. So really, it was Mahaprabhu that was writing the script, and Ramananda Roy, what do you call, admits that he's only a puppet. He admits it. So that's the difference between, you know, I banish the worries and Nephi cannot admit that they're under control of the Supreme Lord. They can't admit it. They want to think, I'm very good.
तो रावण राज जो है यहाँ पर खुद ही जो है इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो एक कठपुतली के समान है और चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जो है उनका संचालन कर रहे हैं। तो यही फर्क होता है एक नवदीक्षित भक्त और एक उन्नत भक्त के बीच में। नवदीक्षित भक्त जो है अक्सर ऐसा सोचता है कि उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है।
So we see that sometimes a nearby devotee, he may externally advance in our society of devotees. He may be given management duties, other things, but actually he may not necessarily be advanced. If he has the grunting, the knot in his heart is still there, then he's not actually advanced, but he can get something done.
तो इसलिए इस आधार पर कि किसके पास संचालन की किस तरह की जिम्मेदारी है, इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि वो भक्ति में कितना उन्नत है। जब तक उसके हृदय की ग्रंथि जो है वो मौजूद है तो उस वक्त उसको ज्यादा उन्नत नहीं माना जा सकता, भले ही उसके पास संचालन करने की कितनी ही बड़ी जिम्मेदारी क्यों न हो। तो प्राकृत भक्त का मतलब यही है कि हृदय में जो गांठ लगी हुई है वो अभी तक खुली नहीं है।
So therefore, the residue, the English word is residue, the leftover mud or dirt, as Mahaprabhu is clearly stating in Sujastaka, the leftover dirt then is not adequately swept out of the heart.
तो इसलिए जो हृदय के अंदर जो मैल जो गति अभी है वो पर्याप्त रूप से अभी साफ नहीं हुई।
So secretly they're still thinking in their heart, aham bhogi, aham ishwara. In their heart they're secretly thinking like that, but externally they can do some work and they get some things done and others may think they're advanced, but as long as that granti is there, they're not actually advanced. That might be Kanista Adhikari who's good at getting the job done. There's a big difference. Write it down.
तो किसी नवदीक्षित भक्त के लिए कोई संचालन के अंदर कोई कार्य कर देना और कर दिखाना और कर गुजरना तो ये पर्याप्त प्रमाण नहीं है उसके उन्नत होने का, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर अभी भी अहम भोगी अहम ईश्वर इस तरीके का जो आसुरी भाव है वो चल रहा हो, तो ऐसे सूरत में उसको बहुत ज्यादा उन्नत नहीं करार दिया जा सकता। इसीलिए भागवत गीता में भगवान अंतर्मुखी संत की बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं।
Introspective means who looks within.
तो जो अंतर्मुखी यानी तो जो अपने गिरेबान में झांक के देखता हो।
So is that only for the yogis?
ये क्या सिर्फ योगी लागू होता है?
Or we see, you know, the illustrations of Bhagavad Gita, you know, yogis sitting, you know, in meditation.
तो हम जैसे भगवद गीता में भी चित्र है कि योगी बैठ के ध्यान लगा रहे हैं या ब्रह्म पे ध्यान लगा रहे हैं या स्वयं भगवान विष्णु पे ध्यान लगा रहे हैं।
So is introspection limited to that category of persons on the path of self-realization and tapasya, is it?
तो क्या अंतर्मुखी होना सिर्फ उसी रास्ते तक सीमित है और क्या सिर्फ वो योगियों तक ही सीमित है?
Hello, you speak in English. Yes. So what is the answer?
Introspective sage can be anyone. Anyone can be introspective sage, be it a yogi or...
Anyone. That is, anyone who's on the... Well, anyone, sure, non-devotees can also be introspective, but we're talking about spiritual introspection.
तो अंतर्मुखी तो वैसे कोई भी हो सकता है, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, पर आध्यात्मिक रूप से अंतर्मुखी होना ये भक्तों का दायित्व है।
So this is actually essential for advancement of Krishna consciousness.
ये जो है बहुत ही जरूरी है आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए।
Otherwise, if you're not introspective, you don't hold up the mirror and look within your heart, where am I spiritually with honesty? If you don't do that, you reach the ceiling and bump your head.
तो अगर हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए अंतर्मुखी नहीं होते, अगर हम आईना अपने सामने रख के देखते अपना चेहरा नहीं देखते, तो इसका नुकसान ये होगा कि हम बहुत ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाके छत पे जाके अपने सर टकरा कर अपना सर फुड़वा लेंगे.
Like if you have a helium balloon and then you release it and it'll go up and it'll go up very nicely and then when it reaches the ceiling, boom.
तो जैसे जैसे कि कोई गैस का बलून होता है, उसको आप छोड़ देंगे हाथ से तो बहुत ही जल्दी बहुत सुचारू रूप से ऊपर की तरफ चला जाएगा, मगर जाके छत पे टकर जाएगा.
Write down this example of helium balloon. Because the nearby practitioner is like a helium balloon, you reach the ceiling, and if you can't go up because of an artist that you don't get rid of, I presume you all know what an artist are for those outside who don't know, unwanted things in the heart.
तो यही होता है नवदीक्षित भक्तों के साथ, जो कि संचालन के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत जल्दी बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर जब और ऊपर नहीं जा पाते तो वहां जाके जब अपना सर फोड़ते रहते टकराते रहते, अनर्थों की वजह से होता है.
This is science, the science of Krishna consciousness.
यही आध्यात्मिक, यही कृष्ण भावना का विज्ञान है.
How to transform our consciousness into pure Krishna consciousness from bodily concept. That's what we're all about.
किस तरीके से अपने चेतना का जो कि दैहिक चेतना है उसको आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित किया जाए.
So if we reach this point where we hear it, isn't it? I mean, here constantly, you know. But devotees reach a certain point of advancement, and it's like that helium balloon that's hit the ceiling, and then they start to complain to their friends or counselors, I don't know, I just don't seem to be advancing anymore. And sometimes they admit it. Or worse, sometimes they don't. It's a fact, everybody has that experience. Sometimes somebody will just hit their head on the ceiling already due to desperately holding on to an artist or unwanted things. And sometimes they don't admit to themselves or anybody that they their false ego is blocking their advancement. Sometimes they don't admit it.
तो इसे देखा जाता है नवदीक्षित भक्त जो होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत उन्नति कर रहे होते हैं बाहरी रूप से, और एक जगह पर जाके फिर उनकी उन्नति रुक जाती है, जैसे कि छत पर जाके जब आपका सर टकर जाए, फिर वो कई बार तो या अपने दोस्तों से इस बात की चिंता प्रकट करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, मालूम नहीं क्यों नहीं बढ़ पा रहे, या इससे भी बुरा हो सकता है कि वो किसी के सामने भी इस बात का इजहार ना करे कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे. और क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हमारा ही झूठा अहंकार हमारे ही आध्यात्मिक उन्नति के आड़े आ रहा होता है.
The devotees in our movement are also meant to be introspective sages, not just the yogis. This point is really important, so write it down.
इसलिए हमारे आंदोलन में भी भक्तों को अंतर्मुखी भक्त बनना चाहिए, ये सिर्फ योगियों के लिए लागू नहीं होता.
So when we take instruction from superiors, so the system we have, the system established by Krishna is Guru Sarva Shastra. There are three ways. And the three ways, Guru Sarva Shastra.
तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान ने हमारा मार्ग निर्धारित किया है, और उसके तीन बिंदु है गुरु साधु और शास्त्र.
But from this verse we understand that even Guru Sarva Shastra is still counted as external.
अगर आप परमात्मा और अंतर्मुखी होने के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखेंगे तो आपको गुरु साधु और शास्त्र भी बहिर्गत ही दिखेंगे.
The ultimate factor is Chitta Guru, Krishna within the heart giving instruction. Now it does not say, Ramananda Rasi doesn't say to the fortune of Paramahansa. He doesn't say that. If that were the absolute truth, if that were the Siddhanta, he would say like that, but he doesn't say like that.
तो इसीलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि दरअसल जो बात है वो है चैत्य गुरु, चैत्य गुरु के निर्देश. तो इसीलिए रामानंद राय यद्यपि वो बात कर रहे हैं उन्नत भक्तों की उत्तम अधिकारी होगी,
फिर भी क्योंकि चैतन्य गुरु हर किसी के अंदर मौजूद होते हैं तो उनका अपना जो है एक एक, एक रोल है.
So, it is the super soul that inspires a devotee for a state.
तो यहाँ पर इसीलिए क्योंकि देखिए पुष्कर है कि वो परमात्मा ही होते हैं जो दरअसल भक्तों को प्रेरित करते हैं.
That is the essence of this verse.
यही पूरे श्लोक का निचोड़ है.
Super soul is within everyone's heart.
क्योंकि परमात्मा हर किसी के हृदय में बसते हैं.
So he speaks even to the neophyte devotee. We need to know.
इसीलिए परमात्मा हर किसी से जो है संचार स्थापित करते हैं, चाहे वह नवदीक्षित भक्ति क्यों न हो.
So it's a perfect arrangement because we're getting Guru Sarva Shastra and then on top of that we're getting instruction from Chaitanya Guru.
तो इसलिए ये उत्तम परिकल्पना है, योजना है कि हमारे पास बहिर्गत तरीके से गुरु साधु शास्त्र मौजूद है और तांत्रिक तरीके से चैत्य गुरु भी मौजूद है.
Devotee often becomes confused.
तो कई बार देखा जाता है नवदीक्षित भक्त जो है वो असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं.
That's why they're neophyte.
यही तो उसका सबूत है कि वो
नवदीक्षित,
क्योंकि उन्नत भक्त जो है आसानी से असमंजस की स्थिति में नहीं पड़ता.
So the neophyte becomes confused about it. May come to his counselor and say, "Well, I don't know, you know, Prabhu, I can't tell what's my mind and what's super soul. I can't tell the difference." This is very common, you see.
तो ये बात ही आमतौर पर जो है देखा जाता है कि भक्त लोग नौसिखिए भक्त जो होते हैं वो अपने से वरिष्ठ भक्तों के पास आके बोलते हैं कि मेरा मन क्या कह रहा है और परमात्मा क्या कह रही है इनमें मैं फर्क नहीं कर पा रहा हूँ. ये सबूत है जो उन्होंने सीखे.
Therefore, in addition to the internal dictation,
इसलिए ऐसे लोगों के लिए आंतरिक निर्देश के अलावा
there is Guru Sadhu Shastra.
गुरु साधु शास्त्र का भी किसी सत्य की गई
supposed to complete the curriculum, so to speak.
तो इसी से जो है उसका पाठ्यक्रम पूरा होता है.
So that you're getting from inside inner dictation, and then you check it with Guru Sarana Shastra to make sure that you're not off, that you didn't actually accidentally insert something from the metal problem. So this is the perfect system.
तो इसलिए निर्देश तो अंदर से ही आते हैं परमात्मा से, पर वो निर्देश परमात्मा के हैं कि मन के इसको निर्धारित करने के लिए गुरु साधु शास्त्र की सहायता ली जाती है. तो अगर कोई गलती करते हैं तो उसमें शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है, उसको हम बाहरी रूप से जो है तो उसकी पुष्टि करवा सकते हैं.
But you always remember this shloka that Krishna does not give inner dictation exclusively to Paramahansa. That would be not the correct understanding at all.
तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से यह समझना जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सिर्फ उन्नत भक्तों को ही निर्देश नहीं देते, सभी को देते हैं. तो सिर्फ उन्नत भक्तों को देना इसे समझना इसका गलत अर्थ निकालना होगा.
I've used the example several times of the shortwave radio set.
जैसे कई बार हम देखते हैं जो रेडियो होता है जिसका रेंज बहुत कम होता है.
You buy a cheap one, let's say, supposing you buy one shortwave radio set that costs 5,000 rupees.
अगर छोटा ट्रांसमीटर है 5,000 रुपये में आ जाएगा सस्ता.
That would be a cheap one.
तो ये सस्ता होगा.
So then the radio signals coming from China, let's say, they have to go over the Himalayas.
तो मान लीजिए चाइनीज रेडियो सेट है और बीच में पहाड़ है.
Or going across the ocean from the United States or Canada.
या समुद्र पार अमेरिका या कनाडा जाना हो.
Or coming from Mexico, anywhere in the world. You see, shortwave radio is a powerful wave, and it goes all over the planet, actually, and beyond the planet.
तो बहुत दूर तक संचार होता है इनका अच्छा रेडियो है.
So if you buy a cheap one and you're listening and you get China.
तो आप सस्ता रेडियो खरीदते हैं और फिर आप चाइना तो उसी रेडियो से जो चाइना जाते हैं तो चाइना में चाइनीज प्रसारण आप पकड़ते हैं और कुछ इन्हीं को बोलते हैं
because it's a cheap set, you know?
क्योंकि वो सस्ता सेट है इसके अंदर
If you spend a half a lakh on a shortwave radio set, then the signal will be crystal clear.
तो पर आप महंगा रेडियो ट्रांसमीटर खरीदते हैं 50,000 सुपर का तो वो अच्छा आपको प्रसारण मिलेगा.
So the more advanced devotee is like the half, write it down, is like the half a lakh shortwave radio set because the more advanced devotee is tuned in such a way. They can receive the internal message from Krishna without distorting it.
तो इसलिए जो उन्नत भक्त है उसकी तुलना उस अच्छे रेडियो ट्रांसमीटर से किया जाता है जो कि आने वाले जो ध्वनि तरंग है उसको अच्छे से कैद करके बेहतर तरीके से हमें सुनाने में मददगार साबित होता है.
And the more the devotee becomes, which means all of us, becomes able to tune in to the message from Krishna internally, the more Krishna is pleased. He likes it. If we actually pick up accurately on his internal message, it pleases him very much. It enthuses him. This is one of the reasons why Prabhupada was mentioning a Gayatri Mantra here.
तो इसलिए अगर जो ज्यादा उन्नत भक्त है वो भगवान के इस ध्वनि तरंग के ऊपर जो है ज्यादा अच्छे से ट्यून हो सकता है उसे ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है जब ये भगवान देखते हैं उसको देख के भगवान के भी उत्साह में वर्धन होता है और भगवान उससे और ज्यादा वार्तालाप करते हैं. यही वजह है प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में गायत्री मंत्र उद्धृत किया है.
सो द गायत्री मंत्र इज स्पीकिंग ऑफ हाउ द लॉर्ड बिकम्स एन्थूस्ड, महाप्रभु बिकम्स एन्थूस्ड, द गोपीज बिकम एन्थूस्ड. सो दिस इज द प्रोसेस. Can we enthuse the Lord by becoming more receptive to His internal messages at the same time following Mahanta Guru externally? Those two together, then there's something more perfect.
So yeah, इसीलिए प्रभुपाद ने गायत्री मंत्र उद्धृत किया है क्योंकि गायत्री मंत्र के जो का जो निष्कर्ष है वो है कि किस तरीके से भगवान गोपियां भगवान के पार्षद वो और ज्यादा से ज्यादा उत्साहित होते हैं आध्यात्मिक इस रास्ते पे और इसीलिए प्रॉपर ने आप इसको उद्धृत किया.
ओके, एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, करेक्शंस,
किसी का कोई टिप्पणी, टीका, संशोधन, सवाल?
ओके, थैंक यू वेरी मच. जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय. गणेश श्री चैतन्य चरणामृत की जय. श्री श्री रघुवर पुष्पनाम की जय. Take over for one day, and then they go over.